नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्च पूंजी प्रचुरता अनुपात के कम स्तर के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत रही है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में आज 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से पूरे राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रुप के चरण 2 को लागू कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्ष 2029 तक संगठित पर्यटन क्षेत्र 250 बिलियन से बढ़कर 500 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है। ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने आदि से संबंधित मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक भलाई के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडे को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्च पूंजी प्रचुरता अनुपात के कम स्तर के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का मुख्य उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करना विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा ने अमरीका के न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सत्र में यह बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पहले वंचित रहने वाले लाखों नागरिकों को डिजिटल वित्तीय समावेशन की पहुंच प्रदान करने के साथ डिजिटल अवसंरचना के निवेश ने भारत की अर्थव्यवस्था को वित्तीय झटकों को झेलने में और सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली भारतमाला और सागरमाला जैसी बड़ी परियोजनाओं के साथ भारत के बुनियादी ढांचा विकास में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने जटिल वैश्विक वातावरण के बावजूद भारत का वृहद आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ है, इस बुनियाद पर भविष्य का विकास टिका हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत फिलहाल बाजार विनिमय दौरों के मामलों में विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि वर्ष 2013 में यह 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक विकास में भारत के योगदान में 200 आधार अंकों की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समुदाय शामिल है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2019 में जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में स्वच्छ जल की उपलब्धता थी। राष्ट्रपति ने बताया कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की भूमिगत जल में कमी होने पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी को दिया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को विशेष श्रेणियों में प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी तथा नकद धनराशि दी गई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के चयन में जल समृद्ध भारत संबंधी सरकार के लक्ष्य को साकार करने में देश के संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों तथा अच्छे कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत के बुनियादी संचालक उपभोग और निवेश मांगों में गति बढ़ने के कारण इसकी विकास गाथा बरकरार है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन में श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7.2% रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि परिदृश्य और ग्रामीण मांग के आधार पर निजी उपभोग की संभावना सकारात्मक दिखती है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि सेवाओं में सतत उछाल शहरी मांग को भी समर्थन देगी। बजट अनुमान के अनुरूप केंद्र और राज्य के सरकारी खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आरबीआई दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में आज 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। यह सहायता सामग्री फिलिस्तीन के पूर्व क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के जरिए भेजी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस खेप में दांतों के उत्पाद, सामान्य चिकित्सीय सामग्री और अधिक ऊर्जा वाले बिस्कुट जैसे आवश्यक औषधियां तथा सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से पूरे राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रुप के चरण 2 को लागू कर दिया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति के बैठक के दौरान लिया गया। समिति ने अक्टूबर से जनवरी के बीच धूल जनित निर्माण गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। इसमें ठोस अपशिष्ट और बायोमास को खुले में जलाने से बेचने के लिए भी कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीआरएपी के चरण 2 के तहत 11 कार्य योजनाएं पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें से 902 किलोमीटर लंबाई की 44 परियोजनाएं राज्य की पहाड़ियों में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 125 किलोमीटर की 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 12000 करोड़ रूपये की शेष 36 परियोजनाएं का कार्य प्रगति पर है। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत तथा चीन के बीच विश्वास बहाल करने में दोनों देशों की सेनाओं की गश्ती की प्रक्रिया पर काम करना एक निर्णायक शर्त होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल द्विवेदी ने यह बात कही। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट भारत तथा चीन के गश्ती प्रबंधनों को लेकर हाल ही सहमति पर टिप्पणी करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि दोनों पक्षों का मुख्य उद्देश्य अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटना है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को चरणबद्ध तरीके से सेनाओं की गश्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की पुनः आश्वस्त करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के दौरान जनरल द्विवेदी ने एक पुस्तक अ जनरल रेमिनिस अ लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर का विमोचन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारतीय सेना का आधुनिक और मुस्तैद बलों में परिवर्तन आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से प्रेरित है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेना आधुनिकीकरण के साथ साथ स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्ष 2029 तक संगठित पर्यटन क्षेत्र 250 बिलियन से बढ़कर 500 बिलियन डॉलर हो जाएगा। पटना में एक पर्यटन मेले को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि विदेशी और घरेलू पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनने की क्षमता है क्योंकि इस क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। श्री शेखावत ने पर्यटन क्षेत्र को दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश कोष में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री शेखावत ने टीटीएफ 2024 का उद्घाटन किया जिसमें 17 राज्यों के साथ नेपाल और भूटान भी भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ एनजी इंग हैन के साथ छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी दोनों पक्षों के बीच बढ़ती निकटता का प्रमाण है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।